Humans are the supreme beings on planet Earth. Our success stories are unlimited. But in the process, what have we done to our lifestyle is quite disturbing. Today, we all are in a rat race where survival has become a struggle. Everybody seems to be running in order to become the winner. We have set such lofty goals for ourselves that it has become impossible to lead a peaceful life. Too much crowd, noise and commotion is everywhere and the life is crazy. Long hours at work, excessive need to succeed have diminished our tolerance level and made us hostile and easily irritable. We have invited into our lives various problems like stress, anxiety, fatigue, depression, aggressiveness and whatnot. We lack self-control and self-discipline and then easily succumb to bad habits like smoking, drugs, etc. The need to get everything done fast has left us with so little time for ourselves that we are forced to indulge in unhealthy habits, ignoring health completely. We are forced to eat roadside food which is constantly being exposed to pollution and in proximity of our very own waste, unhygienic food, open drain pipes, waste scattered on roads. Excessive pollution has totally degraded the quality of life today. All this has led to an alarming rise in both physical and psychological disorders. Hospitals have sprung like mushrooms and are packed with people seeking help desperately to pull their lives out of misery. All that wealth we acquire taking so much pain is finally being used to save our own precious life. Everybody seems to be clueless, confused and lost. Helpless and desperate for direction, we even approach the Almighty in a bid to bring our dysfunctional life back on track. Try bribing God with offerings and fastings. But does God have the answer? Yes. The answer is healing current through psychoneurobics. Desperate times call for desperate measures. The answer seems to lie back in our roots. One man will tell you how. Meet Dr. Chandrasekhar, an ordinary man with an extraordinary story. 14 years ago, he was diagnosed with cancer and hepatitis C, with cirrhosis of liver stage 4 and grade 4. But today, he has totally overcome those deadly diseases and leading a healthy and happy lifestyle. Dr. Chandrasekhar has a truly inspiring story to tell, which will reinforce and strengthen the faith of many in life and in the power of divine.
2-0. Okay. 5-0, then 2-0.
6-0.
6-0. और इसके लिए क्या जरूरी है कि हमने बुद्धि को इंपॉर्ट करना है. ये कैसे क्या बोल रहे हैं, कैसे कर दिया. इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटेलेक्ट को एम्पावर करना पड़ेगा. और एम्पावर करने के लिए चार चीजों की जरूरत है. लॉजिकली वो सोच रहा है क्या, कल किसने देखा है, अभी इंजॉय करो. देखना सीधा है 90 डिग्री में और हाथ को ऐसे टर्न करना है. तो नदी बिजली जाएगी अभी घुटना सीधा रखना है, जमीन को ऐसे छूना है, सुनिए तो अभी आपको सीधा करना, सीधा 90 डिग्री पर करना है और मैं 90 डिग्री पे ताकत लगाऊंगा, आपको बैलेंस करना अपने आप को, अभी बैलेंस कीजिए रेडी। इस पानी को किसी को दिया गया तो उसमें एनर्जी आ गया। अभी हम आपके सामने तीन ग्लास पानी रखा है, ठीक है, 9 पाउडर पर इसको चार्ज किया जा सकता है। अभी पानी पीने से क्या होगा, चेंजेस आ जाएंगे और आपको पूरा पैसे लेके जाएंगे। पहले से ज्यादा हुआ, ज्यादा हो गया, ठीक है, हम देखिए मोटा और ज्यादा हो रहा है। मेंटल एनर्जी फिजिकल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं, क्योंकि माइंड बॉडी को चलाती है, बॉडी इज फिजिकल, माइंड इज मेंटल फिजिकल।
Hailing from India, today he is a well-known and celebrated name in the world of spiritual and holistic healing. He is not just another holistic healer or guru, but someone more like us, someone more relatable to, someone who has become an inspiration for various others like us. He will tell you how he owes his life to an ancient neurotic lifestyle practice from the pages of Indian history he termed as psychoneurotics. The practice can be tracked as back as 5,000 years in Indian history, from which yoga and all other allied health science emerged, manifested by neuromuscular integration exercise. It comprises of various hand gestures and postures called as mudras, the mudras being similar to those demonstrated in the illustrious Ras Leela, are attributed to having therapeutic properties, contributing to well-being of the body, mind and soul. Coupled with Raj Yoga meditation, these psychoneurotic exercises form a complete package.
मैं नसीराबाद से आई हूँ सर।
अच्छा, क्या नाम है?
दिस इज राज प्रोहित।
ओके ओके, क्या प्रॉब्लम है?
हेडेक हो रहा है, लेकिन 15-20 दिन हो गए हैं, मेडिसिन ले रही हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा।
पीपल्स फेथ इन डॉक्टर चंद्रशेखर मेथड्स इज फर्म एंड इज रीइंफोर्स्ड विद ईच सक्सेस स्टोरी। डॉक्टर चंद्रशेखर डिवोट्स एम्पल टाइम ईच डे मीटिंग लिसनिंग and suggesting therapeutic psychoneurotic remedies to various ailing individuals. Just as the ailments vary, so do the mudras. Different ailments require the practice of distinct mudras. You have to observe, understand, and then carefully prescribe. Just like psychoneurotics, every ailment or disorder has a relevant color that helps in healing. Dr. Chandrasekhar uses this therapy on his patients, where he recommends and instructs them to visualize a particular color. For students, Dr. Chandrasekhar's memory cards are like a boon. They help increase concentration, sharpness, and have a relaxing effect on the brain. Different color memory cards focusing on the development of the brain, mind, and the soul as a whole. The book Third Eye Healing Album by Dr. Chandrasekhar contains all information about the color therapy and memory cards. It has been written in a simple, easy to understand language and is best for people looking for an insight into this subject. It's very handy and easy to carry. It's like an educational self-help book assisting and leading people towards a positive lifestyle.
Dear divine brothers and sisters, namaskar. मैं चंद्रशेखर तिवारी, नहीं अभी डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी हूँ, चंद्रशेखर से डॉक्टर बीके चंद्रशेखर कैसे बना अभी मैं आपको वो सीक्रेट बताता हूँ। मैंने कोई मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई नहीं की, लेकिन जिंदगी की पढ़ाई की और मौत का सामना भी किया, मौत के मुंह से वापस आया। मैं आज आपको वो हकीकत बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा दुनिया में पहली बार एक नई हीलिंग साइंस का जन्म हुआ और उस साइंस का नाम है साइको न्यूरोबिक्स। मैं अक्टूबर 1984 में भारतीय वायुसेना ज्वाइन करके अपने करियर की शुरुआत की। सब चीज अच्छा लगा, बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी मिली। 1991 में जब मैं अंबाला कैंप में पोस्टेड हुआ तो वहां पर मुझे एक और नई शिक्षा मिली और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आया। वहां मैंने राजयोग मेडिटेशन सीखा। राजयोग मेडिटेशन से मेरे जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आया, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल हो गया, जिंदगी बहुत अच्छी तरह से कटने लगी। जिंदगी में ऐसा लगा कि टेंशन है ही नहीं, परमात्मा की याद से जीवन बहुत ही अच्छा हो गया। मैंने काफी ईश्वरीय सेवाएं भी की, लोगों को एक नई दिशा भी दी, लोगों को सकारात्मक जीवन जीने की कला भी सिखाई। लेकिन अचानक दिसंबर 1998 में मुझे कुछ फिजिकल अनकंफर्टेबिलिटी फील होने लगा, मेरा वजन भी कम होने लगा, अंदर दर्द भी बढ़ने लगा, तो मैं डॉक्टर्स को रिपोर्ट किया। डॉक्टर्स ने मुझे सलाह दी कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, कोई घबराने की बात नहीं है, ये नॉर्मल ऑपरेशन है। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, डॉक्टर ने ऑपरेशन भी कर दिया। ऑपरेशन के 24 आवर्स बाद उन्होंने मुझे बुलाया और मेरी फैमिली को भी बुलाया।
चंद्रशेखर जी, मैंने आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स देखी, आपको टेस्टिकुलर साइमिनोमा विद हेपेटाइटिस सी विद सिरोटिक लीवर डायग्नोसिस हुआ, ये एक तरह का कैंसर है, पर आप घबराइए मत, अपने पर विश्वास रखिए, आज इसका इलाज संभव है। मैं आपको फिर कहूंगा कि आप घबराएं नहीं, आज इसका इलाज संभव है और हम आपकी जल्द से जल्द कीमोथेरेपी शुरू करेंगे और आप अपने फेस को मजबूत रखें और आप भी इनकी थोड़ी मदद करें इस चीज में, तो मुझे यकीन है कि हम सारे लोग मिलकर इनको ठीक करेंगे। आखिरी में मैं आपसे यही कहूंगा कि वी ओनली ट्रीट बट ही क्योर्स।
मैं तनाव में आ गया, मैं सोचने लगा कि कैंसर मुझे क्यों हुआ, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, कभी कोई गलत आदत नहीं है, बुरी आदतें भी नहीं है, हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ गया, फिर भी हमें कैंसर क्यों हुआ, ये सोचने भी लगा और मन ही मन डरने भी लगा, या फिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। इन सब विचारों में मैं डूबा रहता, डॉक्टर आते सांत्वना भी देते, बोलते सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मन ही मन ऐसा लगता था कि नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर ने हॉस्पिटल बदली किया और एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे से तीसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया। वहां पर मेरी कीमोथेरेपी शुरू हुई। जब कीमोथेरेपी शुरू हुई तो मुझे बहुत ही उसका साइड इफेक्ट हुआ, बार बार उल्टी आना, बार बार शरीर में दर्द होना, भूख नहीं लगना, ऐसी परेशानी हुई, लगा कि दवा सूट ही नहीं कर रहा है मुझे। डॉक्टर बार बार बोलता है ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं देखता और मैं घबरा गया, डरने लगा। हॉस्पिटल में कई मौत देखे हमने, कैंसर वार्ड में कोई ना कोई दिल्ली एक दो व्यक्ति मरते रहते हैं, उनको देख करके मन में डर होता कि पता नहीं मेरा कब नंबर आ जाए, और इस डर के कारण दवा भी सूट नहीं करने लगी। डॉक्टर सोचने लगे दवा बदली कर दिया जाए और मैं डिप्रेशन में चला गया। उसी समय मुझे पता चला कि डॉक्टर ने घर पर टेलीग्राम भी कर दिया, घर से सभी आ गए, उन्होंने आकर के मुझे सांत्वना दी, समझाया अपनी तरफ से, लेकिन मुझे लगा उनको भी डर लग रहा था। उनको मैंने देखा पीछे तनाव व्यस्त रोते हुए, तो भले मेरे सामने आते मुझे सांत्वना देते, लेकिन अंदर से वो भी कहीं रो रहे थे, टूट चुके थे सभी कैंसर जैसे बीमारी का नाम सुन करके, और मैं भी अपने आप में बिल्कुल टूट गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मैं हॉस्पिटल में जब अपने चेहरे को देखता, अपने हाथों को देखता, नाखूनों को देखता तो डर जाता। नाखून बिल्कुल काले होते जा रहे थे, नसें फूलती जा रही थी, भूख नहीं लगता, परिवार से खाना आता लगता कि उल्टी हो जाएगा। हमें फ्रूट्स भी दिया जाता लेकिन फ्रूट्स भी खाने का मन नहीं करता था। एक तो अंदर डर था, दूसरा भूख भी नहीं लगती थी, बार बार उल्टियां होने लगती थी, खाना पचता ही नहीं था। ये सब सोच सोच करके और ही डरता जाता, मन में बिल्कुल भय छा गया था। ऐसा कंडीशन हो गया था कि आज या कल में मृत्यु हो जाएगी। एक दिन जब मैं बाथरूम में गया तो अपना चेहरा देख करके खुद ही डर गया। चेहरा बिल्कुल काला हो गया था, आंखों के नीचे बिल्कुल काला निशान हो गया था। जैसे मैं अपना हाथ सिर पे लगाया मेरे मुट्ठी में सारे बाल आ गए। मैंने देखा पूरा का पूरा बाल निकल गया। फिर मैंने सिर को टोपी से ढक लिया और लेटा रहता, सोचता रहता क्या हाल हो गया मुझे। घर के लोग मेरे पास आते, सांत्वना देते, ईश्वर की याद भी दिलाते, लेकिन पता नहीं ईश्वर से भी विश्वास उठ गया। समझ में नहीं आता था क्या करूं, किसके ऊपर विश्वास करूं, क्या होगा मेरे साथ में। मन ही मन सोचता मैंने कौन से पाप किए, कौन सी गलतियां की कि मुझे एक नहीं ऐसी तीन तीन बीमारियां अचानक ही आ गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, शरीर जर्जर होने लगा, शरीर को देखकर डर लगने लगा, आंखों के नीचे गड्ढे बनने लगे। अपने आप से एक विश्वास सा उठ गया, परमात्मा से भी विश्वास उठ गया था। जब कोई मेरे से मिलने आता यही पूछता, चंद्रशेखर जी आपको कैंसर क्यों हुआ, मेरे पास ऐसा कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि मेरा लाइफ स्टाइल पॉजिटिव है, कोई बुरी आदतें नहीं है, पॉजिटिव सोचता भी था, फिर भी कैंसर हुआ। मैं अपने आप से भी यही सवाल पूछता, परमात्मा से भी यही सवाल पूछता कि आखिर मुझे कैंसर क्यों हुआ। और परिवार के लोग मेरे से आकर पूछते कभी कि आपका परमात्मा कहाँ है, आप जिस ईश्वर को विश्वास करते हो वो कहाँ है, वो क्यों नहीं ठीक कर देता। उसके लिए भी मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं इतना टूट गया था, इतना टूट गया था कि अपने आप में एक मौन व्यक्ति धारण कर लिया। मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता, अकेले में ही रहने का मन करता। कोई गली से भी आता बात करने के लिए, मैं सोचता था क्या बात करूं उससे, मैं जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा है तो मैं क्या बात करूं, किससे बात करूं। परिवार के लोग आते तो भले ही मुंह पर मुझे सांत्वना देते, लेकिन मैं देखता कि अंदर से वो टूट चुके थे। मुझे परिवार की भी चिंता थी, भाई बहन की भी चिंता थी, क्योंकि उनको ही मैं साथ में रख के पढ़ाता भी था, सारा खर्चा भी करता था। एक तरह से पारिवारिक जिम्मेवारी मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा थी। मैं यही सोचता कि अब मेरे बाद क्या होगा, मैं तो बचूंगा नहीं। शायद ये सोच मेरे परिवार वालों को भी था, वो भी अंदर ही अंदर रोते थे और ईश्वर से प्रार्थना करते थे। मुझे दिखाते नहीं थे कि ये रोते नहीं है, लेकिन उनके चेहरे से पता चल जाता था। मैंने बहुत ईश्वरीय सेवाएं की और ईश्वर से यही उम्मीद करता था कि वो सदा मुझे निरोग रखे। लेकिन जब निरोगी रहने के बजाय रोग मिले तो कैसा आपको लगेगा? मुझे भी ऐसा ही लगा। कई लोग मेरे से आकर पूछते, आपका ईश्वर कहाँ है, वो आपको क्यों नहीं ठीक कर देता, आप तो ईश्वर में विश्वास करते हो। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मैं टूट चुका था। शायद मेरी निगेटिविटी इतनी बढ़ गई थी कि दवा भी काम नहीं कर रहे थे। मैं अपने आप में खो जाता और परमात्मा से तो बिल्कुल ही विश्वास उठ गया था। मैं यही सोचता था कि भगवान हमारे लिए है ही नहीं, ऐसा मैं सोचता था। इस भगवान के इतनी मैंने पूजा की, इतना ध्यान लगाया, इतनी उसकी सेवाएं की, लेकिन तुम मुझे यही दिया, इतना ऐसे मन में सवाल उठते थे। मैं उन परिस्थितियों का शब्दों में वर्णन में नहीं कर पा रहा हूं जो मानसिक पीड़ा और साथ साथ तन की पीड़ा दोनों ऐसे थे जो जमदूत की तरह खड़े थे। हॉस्पिटल में रात बहुत लंबे लगते थे। ऐसा लगता था कि रात को खूब चीखूं, खूब चिल्लाऊं, लेकिन रात में सन्नाटा होता था, किसको बुलाऊं। रात भर करवटें बदलता रहता था, पता नहीं चलता था कि सुबह होगा भी कि नहीं होगा। कभी कभी ऐसा लगता बिल्कुल मौत खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है, ऐसा लगता। घबरा जाता, किससे बात करो, क्या करो, उठ के बैठ जाता था। चारों तरफ अंधेरा, और मेरे साथ ही ऐसा नहीं होता था। मैं कहीं पर देखता था रोते हुए, उनको देख देख करके मन ही मन रोता था, किसी को दिखाता नहीं था। रात काटने बहुत मुश्किल हो गए थे, बहुत मुश्किल हो गए थे। हर रात यही सोचता कि ये रात कब बीतेगी, कब सुबह होगा। एक दिन रात में बहुत बहुत बेचैनी हुई, ऐसा कभी नहीं हुआ था मेरे साथ में। ऐसा लगा कि शरीर बिल्कुल टूट रहा है, और ऐसा लग रहा था कि बस अब मौत हुई की हुई। मैंने भी परमात्मा से यही बोला कि अब जल्दी ही मुझे ले जाओ, अब और मैं मौत का इंतजार नहीं कर सकता, प्लीज प्लीज प्लीज। ये कहकर के पता नहीं मैं बेहोश हो गया। जब मैं बेहोश हो गया तो बेहोशी की हालत में एक अचानक तेज प्रकाश मेरे आंखों पे आई। वो असाधारण थे, नॉर्मल लाइट नहीं थे, उसमें तेज था, एक कशिश थी। ऐसा लगा वो मुझे खींच रहा है, मैं उठता जा रहा हूं, उठता जा रहा हूं, ऐसा मुझे फील हुआ। समझ में नहीं आ रहा था कि ये मति भ्रम था, कोई हेलुसिनेशन था या स्वप्न था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा था। हाँ, मुझे कानों में आवाज सुनाई दी कि आपको कुछ नहीं होगा, आपका लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शब्द सुनने में तो अच्छा लगा। अचानक जब मैं उठा तो इस पर विचार करने लगा कि ये तो स्वप्न था और स्वप्न हमेशा उल्टा होता है, ऐसा मैं समझता था। और ये सोच करके कि ये स्वप्न उल्टा होगा यानी अब मेरा मौत निश्चित है, रोने लगा। और जब रोने लगा तो उस समय पुनः वो प्रकाश मेरे ऊपर आई, धीरे धीरे आई, और उससे बहुत ही अच्छा लगा। और इन खुली आंखों से उस प्रकाश को मैं देख पाया, लेकिन वो प्रकाश आंखों पे इतनी तेज आ रही थी कि आंखें चौधरी आ गई, मैं देख नहीं पा रहा था उस प्रकाश को। वो एक दिव्य प्रकाश था और वही कानों में आवाज सुनाई दी कि आपको कुछ नहीं होगा, आपका लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जगे हुए इन खुली आंखों से उस दिव्य प्रकाश को देखा और उस दिव्य प्रकाश के आवाज को सुना तो मन को ऐसा लगा कि एक साथी मिल गया, वो आश मेरी पूरी हो गई। मैं जो कंप्लेन ईश्वर से बार बार करता था, शायद परमात्मा ने मुझे जवाब दिया, एक साइलेंट जवाब। इस दिव्य साक्षात्कार के बाद परमात्मा पर विश्वास पुनः लौट आया। ऐसा लगा कि मेरी सोच इतनी गलत क्यों थी, भगवान के लिए अपनी सोच पर ही गिरानी होने लगी। आंखों में आंसू आने लगे कि मैंने प्रभु को गलत समझ लिया, परमात्मा को मैंने ये सब बोला, फिर भी उन्होंने मुझे अपना रूप दिखाया। ऐसे ऐसे सोच करके आंखों में आंसू आ जाए। इस साक्षात्कार के बाद ध्यान बहुत ही अच्छा लगता। जब भी मैं मेडिटेशन में बैठता मुझे दिव्य साक्षात्कार होते, ट्रांस का अनुभव होता, और यह सिलसिला ध्यान में चलता रहता। अनेक प्रकार के सीन सिंगलियां दिखाई देते, प्रभु से एक बातें होने लगे। मैं प्रभु से प्रश्न पूछता और उसका मुझे उत्तर मिलता। ध्यान सहज हो गया और अजीब गरीब अंध होने लगे। हॉस्पिटल का समय कैसे बीतने लगा पता ही नहीं चला। मन सकारात्मक हो गया, प्रभु में विश्वास 100% दृढ़ हो गया। परमात्मा के दिव्य साक्षात्कार के बाद जीवन बिल्कुल बदल गया। ध्यान सहज लगने लगा। ध्यान में साक्षात्कार का सिलसिला शुरू हुआ। ध्यान में बहुत सारे चित्र दिखाई देते और वो चित्र कुछ न कुछ अर्थ लेके आते थे मेरे सामने। उन चित्रों के आध्यात्मिक रहस्य के ऊपर मैं मनन चिंतन भी करता था और ऐसा लगता कि ज्ञान का तीसरा नेत्र ही खुल गया, भगवान के दर्शन हुए और ज्ञान की गंगा बहने लगे। मन ही मन ऐसा लगता कि खुशी का खजाना मिल गया। मैं शांति से सबसे बातें करने लगा, लोग मुझे सांत्वना देते, मैं मुस्कुराता, उनसे बातें करता और मैं उनको सांत्वना देता कि अब तो मेरी रक्षा स्वयं परमात्मा कर रहा है। जाखोरा के साया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जगदारी हुए, स्वयं परमात्मा ने मुझे अपने गोद में समा लिया और वो हमारी रक्षा कर रहा है। मन ही मन यही गीत निकलता कि ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ऐसे ऐसे स्लोगन्स मेरे मन में आते रहते और मन ही मन प्रभु को दिल से धन्यवाद देता और कभी रोने भी लगता कि मैंने कितना ठेस पहुंचाया प्रभु को, ऐसा लगता। लेकिन वो प्रेम के आंसू होते परमात्मा की तरफ, ऐसे लगता कि परमात्मा मुझे कितना प्यार कर रहा है, कितना प्यार कर रहा है। आज भी जब वो सीन याद आते हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं। वाह रे मेरा भाग्य, ऐसा लगता था। और उस ध्यान में जब प्रभु से क्वेश्चन पूछता उसका जवाब भी ऐसे वो देते जैसे एक सच्चा बाप एक अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, एक सच्चा टीचर एक अपने शिष्य को सब चीज सिखा रहा है। ऐसा बाप ऐसा टीचर का अनुभव मुझे हुआ। परमात्मा में मुझे बाप भी दिखाई दिया, टीचर भी दिखाई दिया और सदगुरु भी दिखाई दिया और इसके साथ साथ वैद्यनाथ भी दिखाई दिया। परमात्मा सबसे बड़ा डॉक्टर है, सुप्रीम डॉक्टर है, वैद्यनाथ है और वैद्यनाथ बन करके मुझे वो ध्यान में हीलिंग करंट देता। हीलिंग करंट का अनुभव मैं शब्द में नहीं वर्णन कर सकता। उस हीलिंग करंट से ऐसे लगता कि शरीर बिल्कुल रिलैक्स, मन शांत हो जाता और दर्द का तो नामो निशान ही मिट गया। जो दवाइयां पहले बिल्कुल काम नहीं करती थी वो काम करने लगे। दवाइयां अपना काम करती, शरीर में जाती दवाइयां और मन अपना काम करता, प्रभु में लग जाता। हॉस्पिटल का समय कैसे गुजरा, कैसे साल गुजर गए पता ही नहीं चला। लेकिन हाँ, परमात्मा से जो मैंने सीखा उसको लिखने लगा, लिख लिख करके उसको किताबों के रूप में दुनिया के आगे रखा। मैं आपको इन तीन मुख्य सवालों के जवाब के बारे में बताने जा रहा हूं जो स्वयं प्रभु ने दिया, परमात्मा ने दिया। दुनिया में उसका उत्तर नहीं है। मैंने परमात्मा से तीन सवाल पूछे। सबसे पहला सवाल पूछा कि हे भगवान, मुझे कैंसर क्यों हुआ? पहले प्रश्न के जवाब में प्रभु ने कहा कि आपने करंट नहीं लिया इसलिए आपको कैंसर हो गया। बस एक लाइन में आंसर दे दिया। समझ में नहीं आया कि ये कौन से करंट के बात परमात्मा ने की। मैंने उनसे पूछा, आप कौन से करंट की बात कर रहे हैं? दुनिया में तो इलेक्ट्रिकल करंट मैंने सुना है, ये कौन सी करंट है? तो परमात्मा ने जवाब दिया, ये स्पिरिचुअल करंट है जो स्वयं परमात्मा से आती है। इसको स्पिरिचुअल एनर्जी कहा जाता है। जैसे इलेक्ट्रिकल करंट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहा जाता है, उसी तरह स्पिरिचुअल करंट को स्पिरिचुअल एनर्जी कहा जाता है। एक डेड बॉडी और एक लिविंग बॉडी में क्या फर्क है? इट इज द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ स्पिरिचुअल करंट। डेड बॉडी में स्पिरिचुअल करंट नहीं है, स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, इसलिए डेड बॉडी के कोई भी ऑर्गेन काम नहीं करता। मनुष्य के शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो ब्रेन हो, कंप्यूटर की तरह है, ये हमारा हार्ट एक वाटर पंप की तरह है, हमारा पेट मिक्सर ग्राइंडर की तरह है, हमारा किडनी वाटर फिल्टर की तरह है, ये सारी मशीनें कौन सी करंट से चलती है? सर्टनली देयर इज नो इलेक्ट्रिकल प्लग हियर, कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्लग नहीं है, सॉकेट नहीं है कि हम यहाँ पे लगा लें और सारी मशीनें काम करें। ये अंदर ही आत्मा के अंदर वो परमात्मा की स्पिरिचुअल करंट है जो इस शरीर को चला रही है। एक डेड बॉडी में वो करंट नहीं है, इसलिए वो काम नहीं कर रही है। डेड बॉडी से आप आंख निकाल लीजिए, किडनी निकाल लीजिए और लिविंग बॉडी में उसको ट्रांसप्लांट कर दीजिए, वही ऑर्गन काम करने लगेगा। क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी में सिर्फ एक डिफरेंस है, वो है कि मन स्पिरिचुअल एनर्जी का पार्ट है और मन फिजिकल एनर्जी में नहीं होता। सो फिजिकल एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग ओनली फिजिकल और मैकेनिकल वर्क, और स्पिरिचुअल एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग फिजिकल वर्क एज वेल एज मेंटल वर्क। जो फिजिकल एनर्जी है मानसिक कार्य नहीं कर सकती, सोचने का काम नहीं कर सकती, रोबोट कंप्यूटर सोच नहीं सकते। यही बेसिक डिफरेंस है जो परमात्मा ने बताया मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में, और उन्होंने कहा कि इस करंट को लेना पड़ता है। मैंने पूछा उनसे कि क्यों लेना पड़ता है इसको, तो उन्होंने कहा कि बिना इसके सप्लाई का आपके ऑर्गन काम ही नहीं करेंगे। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि घर में जैसे लो वोल्टेज हो जाता है या करंट नहीं आती है तो घर की मशीनें काम नहीं करती। उसी तरह शरीर के अंदर जब करंट का फ्लो लो हो जाता है, वोल्टेज लो हो जाता है, तो अंदर की मशीनें काम नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल हार्ट बीट है, हार्ट बीट अगर स्लो हो जाए तो क्या है, क्या होगा, हमारे ब्लड प्रेशर लो होने लगेंगे। वैसे अगर लो वोल्टेज है तो वाटर पंप काम नहीं करता, उसी तरह लो फ्लो ऑफ एनर्जी हार्ट में, हार्ट को ठीक से नहीं चला सकते। इसका सोल्यूशन क्या है मेडिकल साइंस में, वो पेसमेकर लगा देते हैं। पेसमेकर वोल्टेज को स्टेबलाइज कर देता है, वही हार्ट काम करने लगता है। जैसे हमारे घर में वोल्टेज डाउन हो जाता है तो हम स्टेबलाइजर लगा देते हैं। सिर्फ पेसमेकर स्पिरिचुअल एनर्जी पैदा नहीं कर सकता। एक डेड बॉडी में पेसमेकर काम नहीं करेगा, डेड बॉडी में डायलिसिस नहीं होगा, क्योंकि देयर इज नो स्पिरिचुअल एनर्जी, वहां पे स्पिरिचुअल एनर्जी ही नहीं, करंट ही नहीं। तो परमात्मा ने मुझे जवाब दिया कि इस करंट को लेना पड़ता है, और लेने का जो तरीका है वह है मन को कनेक्ट करना, क्योंकि मन एक रेगुलेटर है जो परमात्मा से एनर्जी लेता है और ब्रेन में उसको ट्रांसफर करता है। ब्रेन से वही एनर्जी स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए शरीर के सब अंगों में जाती है। मन कैसे स्पिरिचुअल एनर्जी को बॉडी में रेगुलेट करता है, ब्रेन में ट्रांसफर करता है, ये एक मैं बहुत ही आसान एग्जांपल के द्वारा समझा रहा हूं। मन एक रेगुलेटर की तरह काम करता है, परमात्मा रूपी जनरेटर से आत्मा रूपी पावर हाउस में स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो होता है। यही कारण है कि आत्मा को सेल्फ कहा जाता है। सेल्फ एक एक्रोनिम है, एस का मतलब होता है स्पिरिचुअल, ई का मतलब एनर्जी, एल का मतलब लाइट, एफ का मतलब फॉर्म। स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म जो ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस की थैली के अंदर रहती है, और उस प्लेस जहाँ पे आत्मा रहती है उसका नाम है नेरो इंडोक्राइनल एक्सिस। वहीं से सारा एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन मन के द्वारा होता है। मन एक रेगुलेटर की तरह है जो एनर्जी को ब्रेन में प्रवाहित करता है, स्पिरिचुअल एनर्जी को, कैसे, इसको मैं एक एग्जांपल के द्वारा मैं समझा रहा हूं। मान लीजिए आप पार्क में चार चक्कर लगा रहे हैं अर्ली मॉर्निंग, जॉगिंग कर रहे हैं। चार चक्कर लगाने के बाद आप बेंच पर बैठ गए। बैठने के बाद आपके मन में क्या विचार आया? मैं थक गया। ये भी तो विचार ही है ना, मैं थक गया। जैसे ही विचार मन में आपकी एनर्जी विड्रॉ हो गई, आप रिलैक्स हो गए और सोचने लगे बस थोड़ा सा सांस ले लें, अब हिम्मत नहीं है। लेकिन ठीक उसी समय अगर आपको एक पागल कुत्ता दिखाई दे जो एक व्यक्ति को काट लिया, उसके मुंह में खून लगा हुआ है, अब आपके तरफ वो बढ़ते हुए आ रहा है, आपके पास आ रहा है, आप क्या करेंगे? क्या कुत्ते को बोलेंगे कि नहीं 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 मैं थका हुआ मत काटना? आपके मन में क्या विचार आएगा? भागो। और जैसे ही भागो आएगा, आपके शरीर के अंदर वो स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो कंकण में हो जाएगा और आप बिजली की तरफ भाग जाएंगे। उस समय अगर रिकॉर्ड किया गया टाइमिंग तो शायद आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो सकता है। तो इतनी बड़ी ताकत या एनर्जी कहां से आई? आपके सिर्फ एक विचार से भागो का बटन दबा। भागो भी एक विचार है, थक गया हूं ये भी एक विचार है। दोनों विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। तो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी का फ्लो डिपेंड करता है विचारों के ऊपर, भावनाओं के ऊपर। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर नहीं किया जा सकता है। साइंस के नियम के हिसाब से एनर्जी इज नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड, यानी ऊर्जा का ना सृजन होता है ना विनाश होता है, उसका रूपांतरण होता है। ठीक उसी तरह स्पिरिचुअल एनर्जी का भी ना सृजन होता है ना विनाश होता है, यानी आत्मा अजर अमर अविनाशी है और उसका रूपांतरण होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी घरों में आती है तो उसका रूप बदल जाता है, लाइट के द्वारा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है, माइक के द्वारा ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है, फैन के द्वारा मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाती है, हीटर के द्वारा हीट एनर्जी में बदल जाती है। तो वही विद्युत धारा, वही इलेक्ट्रिकल करंट मशीनों के द्वारा अलग अलग ऊर्जा में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक उसी तरह परमात्मा से आने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी आत्मा में स्टोर होती है। जैसे ही वो आत्मा से एनर्जी माइंड में आती है, मेंटल एनर्जी में बदल जाती है। मेंटल एनर्जी भी दो तरह की होती है, जैसे ऊर्जा एक काइनेटिक होती है और दूसरा स्टैटिक होती है, स्थिर और गतिज। ठीक उसी तरह मेंटल एनर्जी में भी दो तरह की ऊर्जा होती है, एक स्थिर और दूसरा गतिशील। स्थिर ऊर्जा हमारा थॉट है और गतिशील ऊर्जा हमारा हमारी भावनाएं हैं, इमोशंस। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एनर्जी इन मोशंस इज कॉल्ड इमोशंस। तो इमोशंस और थॉट्स ये दोनों मेंटल एनर्जी के पार्ट है और ये दोनों हमारे ब्रेन के अंदर ट्रांसमिट होते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, वो लोग भी बीमार पड़ते हैं और आजकल बहुत ही ज्यादा बीमारियां हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्या कारण है इन बीमारियों का? परमात्मा से दूसरा सवाल पूछा था कि दुनिया में लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि बीमारी का मुख्य कारण है लो फ्लो ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, यानी स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो कम हो जाता है शरीर के ऑर्गन में तो बीमारियां होती हैं। और इसका कारण है कि लोगों को नींद ठीक से नहीं आती, यानी निद्रा योग नहीं हो पाता और मेडिटेशन करने नहीं आता, यानी योग निद्रा करने नहीं आता। दोनों की क्वालिटी कम हो गई है, चाहे वो निद्रा योग हो या योग निद्रा हो। इसके कारण शरीर के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो लो हो गया है और साथ साथ वोल्टेज डाउन हो गई है। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ, पैंक्रियाज जो हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन पैदा करती है। पैंक्रियास के अंदर बीटा सेल्स होते हैं जो बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं। पैंक्रियास के अंदर जब स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो कम हो जाता है तो उसके अंदर का बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं बना पाते, इसलिए हमें इंसुलिन की आउटसोर्सिंग करती है, यानी इंडिविजुअल डॉक्टर अंदर काम करना बंद कर देता है। इसलिए बीमारी का मुख्य कारण है लो वोल्टेज और लैक ऑफ फ्लो ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। स्पिरिचुअल एनर्जी की फ्लो कम होने के कारण शरीर के अंदर जो 7 चक्र हैं उनमें भी एनर्जी कम हो जाता है, चक्रों की गति स्लो हो जाती है। जब चक्रों की गति स्लो हो जाती है तो उससे संबंधित ऑर्गेन में बीमारियां होनी शुरू हो जाती है। जैसे आपका हार्ट चक्र है, हार्ट चक्र का स्पीड स्लो हो गया, एनर्जी कम हो गई तो हार्ट चक्र से संबंधित आपके जो ऑर्गेन्स हैं, हार्ट है, लंग्स है, उनमें बीमारियां पैदा होने लगती है, यानी कोलेस्ट्रोल, ब्लड प्रेशर, अस्थमा जैसी बीमारियां पैदा होती है और हार्ट अटैक भी हो जाता है। तो इस तरह बीमारी का मुख्य कारण परमात्मा ने बताया कि लैक ऑफ फ्लो ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। और तीसरा सवाल पूछा कि हेल्थ और हैप्पीनेस का सीक्रेट क्या है। आज सबके पास वेल्थ है लेकिन हेल्थ और हैप्पीनेस नहीं है। जो गरीब है उनके पास भी हेल्थ और हैप्पीनेस नहीं है, कोई ना कोई बीमारी जरूर है। तो इस समय हेल्थ और हैप्पीनेस कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये मुख्य रूप से 3 सवाल मैंने परमात्मा से पूछे। परमात्मा से मैं तीसरा सवाल पूछा था कि हेल्थ और हैप्पीनेस का सीक्रेट क्या है। परमात्मा ने मुझे इसके जवाब में उन्होंने स्वर्ग का सीन दिखाया और स्वर्ग में स्पेशली दिखाया कि कैसे देवताएं रास कर रहे हैं और जब रास करते थे तो उनके शरीर के ऊपर अनेक प्रकार के रत्नों के द्वारा अलग अलग रंगों की किरणें आती थी और नाद ध्वनि इतनी अच्छी थी, इतनी सुरीली थी कि उसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो परमात्मा ने बताया कि ये रास रंग और नाद के द्वारा देवताएं निरोगी डांस करते थे, इसलिए वो सदा हेल्दी और हैप्पी रहते थे। आज के देश में एरोबिक डांस होता है, एरोबिक डांस में म्यूजिक ऑन कर देते हैं और म्यूजिक के ऊपर हम कूदते हैं, ये एरोबिक डांस हो जाता है। तो परमात्मा ने हमें बताया कि एरोबिक डांस सीक्रेट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस था। रास का वैज्ञानिक कारण क्या था, जैसे हम रास करते थे लोग रास में दो चीजें मेन होती थी, एक हाथों की मुद्राएं और दूसरा पैरों का कोऑर्डिनेशन, कैसे पैर को टैप करना है। तो दोनों का सिंक्रोनाइजेशन इतना अच्छा ढंग से होता था कि पूरे शरीर के न्यूरो सिस्टम में 100% एनर्जी का फ्लो होता था, 100% एनर्जी शरीर के अंदर फैलती रहती थी। इस तरह ऊर्जा का भंडार शरीर के अंदर मौजूद रहता था। रंग जब रत्नों से रंग आते थे तो उनका जो रंगों की फ्रीक्वेंसी थी वो शरीर के 7 चक्रों को एक्टिव रखते थे। और ना ध्वनि जो तरंगे थी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलती थी वो ध्वनि तरंगे शरीर के मेटाबॉलिक रेट को 0 कर देते थे। 0 का मतलब बिल्कुल मिनिमम हो जाता था, जिसके कारण सेल्स की डेथ रेट कम हो जाती थी, इसलिए वो कभी बूढ़े नहीं देते थे, इसलिए सारे देवी देवताएं यंग दिखते थे। आपने कभी लक्ष्मी नारायण को नहीं देखा होगा कि बूढ़े हुए हैं। तो इस तरह रास रंग और नाद के द्वारा उस समय का हेल्थ और हैप्पीनेस मेंटेन होता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, रास अलग अलग क्लासिकल डांस में बट गया, रास से ही अलग अलग मुद्राएं निकल गई, ध्वनि अलग अलग म्यूजिकल थेरेपी में बदल गया और जो रंग था उससे कलर थेरेपी शुरू हो गया, क्रोमोथेरेपी शुरू हो गया, जेमोथेरेपी शुरू हो गया। इस तरह रास रंग नाद का जो एक कोऑर्डिनेशन था वो कोऑर्डिनेशन टूट गया और धीरे धीरे लोग बीमार पड़ने लगे। परमात्मा का जवाब सुनकर के मैंने दोबारा प्रश्न पूछा कि आज के डेट में रास रंग और नाद कैसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। आज के डेट में कोई रास नहीं कर सकता। रंग के लिए रत्न चाहिए, रत्न बहुत कीमती है और आज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो उस समय होते थे। तो तीनों का एप्लीकेशन आज के डेज में, आज के दिनों में कैसे हो सकता है? तो उन्होंने जवाब दिया कि रास में मुख्य पार्ट होता है मुद्राओं का। मुद्रा एक अपने आप में विज्ञान है। वेदों में भी लिखा गया है कि मुद्रा के समान कोई औषधि नहीं है। सिर्फ मुद्रा की खासियत है कि इसको एक नियत समय पर और एक निश्चित अवधि तक किया जाता है। यानी कि 5 मिनट 2 मिनट करने से फायदा नहीं होता है, ये कम से कम 10 से 15 मिनट या ज्यादा करे तब जाकर मुद्राओं का प्रभाव निकलता है। मुद्रा अपने आप में एक विज्ञान है। फिर परमात्मा ने कहा कि रंग आज विज्ञान परमात्मा से आने वाले रंग के बारे में बिल्कुल नहीं जानती है। परमात्मा से जो स्पिरिचुअल एनर्जी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में आती है, यानी अलग अलग रंगों में जो आती है, उसके ऊपर किसी का ध्यान गया ही नहीं है। दुनिया भौतिक साधनों से आने वाले रंगों के बारे में सिर्फ सोचती है। उन्होंने जवाब दिया कि परमात्मा से आने वाले जो रंग है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तो उसमें इतना ज्यादा हीलिंग पावर है कि आज की कोई भी थेरेपी में या कोई भी किरणों में या किसी भी थेरेपी में जो भी सिस्टम है उसमें वो पावर नहीं है। परमात्मा के किरणों में लेजर से भी ज्यादा पावरफुल पावर है, हीलिंग पावर है जो शरीर के ऑर्गन को ठीक कर सकती है। तो परमात्मा ने हमें जवाब दिया कि परमात्मा को मन से जुड़ करके परमात्मा से एनर्जी लेने की प्रक्रिया को लागू करो। और साथ में उन्होंने कहा कि नाद, नाद के लिए भले वो इंस्ट्रूमेंट आज के डेट में हो या ना हो, लेकिन ब्रह्म नाद से बढ़ के कोई नाद नहीं है। ब्रह्म नाद से श्वासों का रेगुलेशन होता है, श्वास की गति कम हो जाती है और आयु बढ़ जाती है, क्योंकि मनुष्य की आयु उसके श्वासों पर निर्भर करती है। जितनी श्वासें कम होगी उतनी आयु लंबी होगी। आज के डेट में आ जाता है कि कछुआ टॉर्टोइस 1 मिनट में 5 बार सांस लेता है और वह 150-200 साल तक जिंदा रहता है। कुत्ता 1 मिनट में 20 से ज्यादा बार सांस लेता है और वह 12 साल जिंदा रहता है। तो भगवान ने आपको आयु ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में आपको दिया है, एक नियत श्वास की गिनती दी है। अगर उस हम गिनती को जल्दी से खत्म कर दें तो आयु जल्दी खत्म हो जाएगी। अब हमारा जो स्वास्थ्य है वो हमारे हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं है। चाहे तो हम 30 साल जिए, 20 साल जिए या 100 साल जिए। तो इस तरह रास रंग और नाद तीनों को परमात्मा ने हमें ब्लेंड करने के लिए कहा, मिश्रित करने के लिए किया और कहा कि इसमें 80% जो रोल होगा वो परमात्मा से आने वाले भिन्न रंगों का होगा, जो हर एक इंसान को, हर एक मनुष्य को अपने मन के द्वारा ही लेना पड़ेगा। इसलिए ये साइको न्यूरोबिक्स साइंस बना, क्योंकि इसमें मन का विज्ञान है। साइको न्यूरोबिक्स दूसरी तमाम हीलिंग साइंस से बेहतर ही नहीं, सबसे अच्छा है, अल्टीमेट है। अल्टीमेट साइंस ऑफ हीलिंग ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इसको सिखाने वाला स्वयं परमात्मा है। दुनिया में बाकी जितनी थेरेपीज है उसका आविष्कार मनुष्यों ने किया, लेकिन इस थेरेपी का आविष्कार हमने भी नहीं किया, स्वयं परमात्मा ने हमें बताया। और मैं अपने आप में इसका टेस्टिमोनी हूं। जब मेरा कैंसर हेपेटाइटिस सी सिरोसिस ऑफ लिवर ठीक हो सकता है, तो छोटी मोटी बीमारियां दूसरों को भी ठीक हो सकती है। इस तरह हमने तीन टेक्नोलॉजी को, रास से मुद्रा, रंग से परमात्मा से आने वाली रंग, और नाद में ब्रह्म नाद को ले करके बहुत सारे साइकोनोबिक एक्सरसाइज बनाए, और इसका एप्लीकेशन बहुत सारे पेशेंट के ऊपर किया, और हमें उनसे अच्छा रिजल्ट मिला। इस तरह साइको न्यूरोबिक्स एक विज्ञान बन गया। इस विज्ञान के जन्मदाता के रूप में परमात्मा ने मुझे एक माध्यम बनाया, और इस तरह इस नए साइंस के ऊपर हमने थेसिस लिखा और पीएचडी किया, जिसके कारण आज मैं चंद्रशेखर से डॉक्टर वीके चंद्रशेखर बन गया। अब रास से मुद्रा, रंग में परमात्मा से आने वाले किरणों को देख करके और ब्रह्मनाद करके अलग अलग साइकोलॉजी एक्सरसाइज चलाए हैं, जिसके द्वारा कई सारी बीमारियों को हम प्रैक्टिकली ठीक कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि ये रेगुलर आपको करना पड़ेगा। आपको रिजल्ट 21 दिन में बहुत ही अच्छा मिलने लगेगा, 40 दिन में रिजल्ट मोर देन 75% हो जाता है, और इसको अगर आप जीवन में धारण कर लें तो बीमारी सदा के लिए आपसे दूर भाग जाती है। अब आइए आपको भिन्न मुद्रा, रंग और नाद के कॉम्बिनेशन से अलग अलग ठीक होने वाले बीमारियों के बारे में बताते हैं। परमात्मा ने जो मुझे उन तीन सवालों के जवाब दिए, उन तीनों सवालों के जवाब मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। साइकोनोबिक एक्सरसाइज कहीं भी कभी भी किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है। ये एटीएम की तरह है, एनी टाइम मेडिटेशन। इसको करने से मन शांत हो जाता है, रेगुलर इसको करने से मन वश में हो जाता है। साइकोनोबिक एक्सरसाइज को राज्य ध्यान के साथ मिलाकर करने से इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, मन बिल्कुल कंट्रोल में हो जाता है। आज हम मन को ही कंट्रोल करना चाहते हैं, मन को पॉजिटिव बनाना चाहता है, और ये साइकोनोबिक एक्सरसाइज से ही पॉसिबल है।
देर आर 14 इजी साइकोन्यूरोबिक्स कंप्राइजिंग ऑफ वेरियस मुद्राज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ब्रह्मनाद एंड कलरफुल वाइब्रेशंस ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी कमिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर सिग्फा। द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ डूइंग दीस साइकोन्यूरोबिक्स विद मुद्रा इज 10 मिनट्स। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ दीस साइकोन्यूरोबिक्स विल मेक यू हेल्दी, हैप्पी and disease-free forever. Choose a time when your mind is calm and collected. This is ATM, Anytime Meditation. Now we will prepare our body and mind for practicing these easy psychoneurobics with various mudras. Psychoneurobics with mudras can be done at any place and at any time and in any position while walking, sitting, standing or lying down. But peaceful neurobics in Akash or Shunya Mudra must be done only in sitting position. Start by sitting in a comfortable posture. Ideally, position yourself on a flat surface with legs crossed. Spine should be upright. Arms gently placed on both the knees with palms facing up. Both your body and mind should be at ease. Take a deep breath, relax yourself, and you are ready to practice the mudras. If you are unable to sit cross-legged, you can do it by sitting in a chair, keeping your upper portions of your body and spine erect. Blissful Psychoneurobics with Gyan Mudra. Sit in an upright position. Place your hands on your knees, palms facing upward. Join tips of your index or first finger to the tip of your thumb. Remaining three fingers will be straight and at ease. Use both hands. The color of spiritual energy coming from God for Gyan Mudra is violet. Take a deep breath. Touch the surface of your tongue to the palate or the roof of your mouth. Visualize violet color and release the breath by humming sound. Concentrate your mind on violet color coming from God and feel blissful state of mind. Practice this mudra for minimum of 10 minutes with eyes opened or closed. Benefits of this psychoneurobics with Gyan Mudra. It cures problems related with sleep disorder and hormones, empowers the endocrine system and releases required hormones in blood, improves memory and concentration power, and encourages positivity in the mind and body. The Gyan Mudra can be practiced anytime, any place, and in any posture with eyes opened or closed. Peaceful Psychoneurobics with Vayu Mudra. Sit in an upright position. Place your hands on your knees, palms facing upward. Bend your index or first finger at the base of thumb, the thumb gently pressing the finger. Remaining three fingers will be straight and at ease. Use both hands. The color of spiritual energy coming from God for Vayu Mudra is blue. Take a deep breath. Close your eyes and in your mind visualize blue color. Release the breath slowly. Concentrate on blue color coming from God throughout the exercise. You will feel your mind calming down and stress draining from your body as the breath deepens further. Vayu Mudra relaxes the body cells and relieves of stress. It also helps in curing arthritis, gouts, joint pain, and breathlessness. Peaceful Psychoneurobics with Akash Mudra. Sit in an upright position. Place your hands on your knees, palms facing upward. Join the tip of your middle finger to the tip of your thumb. Remaining three fingers will be straight and at ease. Use both hands. The color of spiritual energy coming from God is blue. Take a deep breath and visualize blue color coming from God by your third eye and feel peace within. Benefits of this psychoneurobics with Akash Mudra. It helps to check spinning of head, giddiness and vomiting tendency. This also helps in curing thyroid and ear, nose, throat diseases. One must take precautions while doing this psychoneurobics in Akash Mudra. This must be performed in sitting posture only and should not be attempted after the ailment is cured. Peaceful Psychoneurobics with Shunya Mudra. sit in an upright position. Place your hands on your knees, palms facing upward. Bend your middle finger at the base of thumb, the thumb gently pressing the middle finger. Remaining three fingers will be straight and at ease. Use both hands. The color of spiritual energy coming from God is blue. Take a deep breath and visualize blue color coming from God by your third eye and feel peace within. Shunya Mudra helps cure serious ailments related to ear, nose and throat. It relieves hearing impairment and also helps eliminate pus formation in ears. Joyful Psychoneurobics with Prithvi Mudra. Sit in an upright position. Place your hands on your knees, palms facing upward. Join tip of your ring finger to the tip of your thumb. Remaining three fingers will be straight and at ease. Use both hands. The color of spiritual energy coming from God is yellow. Take a deep breath and visualize yellow color coming from God and feel joy and satisfaction within. Practice of this psychoneurobics improves digestion and fortifies the digestive system. Joyful Psychoneurobics with Agni Mudra. Sit in an upright position. Place your hands on your knees, palms facing upward. Bend your ring finger at the base of the thumb gently pressing the ring finger. Use both hands. The color of spiritual energy coming from God is yellow. Take a deep breath and visualize yellow color of joy and happiness coming from God. You can perform this psychoneurobics 3 times a day for at least 15 minutes each time to cure diabetes and liver problems. This also helps in improving digestion and aids in fat loss. Practicing this mudra regularly promotes good health. Purifying psychoneurobics with Varun Mudra. Sit in an upright position. Place your hands on your knees, palms facing upward. Join the tip of little finger to the tip of your thumb. Use both hands. The color of spiritual energy coming from God is orange. Take a deep breath and visualize orange color of purity coming from God and making our thoughts and emotions pure. This helps in purifying water elements in the body. This aids in the purification of blood, imparting a healthy glow to the face. It also helps eliminate marks, pimples, and blemishes on skin. It is helpful in curing urine-related ailments. Purifying psychoneurobics with Indra Mudra. In an upright position, place your hands on your knees, palms facing upward. Bend your little finger at the base of thumb, the thumb gently pressing the little finger. Remaining three fingers will be straight and relaxed. Use both hands. The color of spiritual energy coming from God is orange. Take a deep breath and visualize orange color of purity coming from God. You can feel a sense of purity in your mind and body. Indra Mudra has several benefits. It controls water retention in the body and helps cure swelling in legs. The mudra also curbs cough, cold, and prevents skin disorders. Enlightening psychoneurobics with Pran Mudra. Sit in an upright position. Place your hands on your knees, palms facing upward. Here you have to join tips of three fingers together, the little finger, ring finger, and the thumb. Remaining two fingers will be straight and relaxed. Use both hands. Now, form your mouth into an O shape and gently chant the tune of O. The sound emanating from your throat must be deep, constant, and soothing. The color of spiritual energy coming from God is deep blue or indigo. While chanting the tune of Om, visualize the color deep blue or indigo coming from God and enlightening the mind and intellect. This helps in releasing toxins from the body. It detoxifies the cells and also controls neuromuscular movements. Pran Mudra is literally life force, as it helps cure almost all ailments and cuts energy loss in the body. This psychoneurobics must be done on an empty stomach. Purifying psychoneurobics with Apan Mudra. Sit in an upright position. Place your hands on your knees, palms facing up. Touch the tips of middle finger, ring finger, and thumb together. Remaining two fingers will be straight and relaxed. Use both hands. The color of spiritual energy coming from God is orange. Take a deep breath and visualize orange color of purity coming from God and cleansing the mind and body. Apan Mudra cures kidney problems and helps in detoxifying the body. It also cures all urinary disorders. Peaceful psychoneurobics with Dhyan Mudra. Sit in an upright position. Place your hands on your knees, palms facing upward. Touch the tips of first finger, middle finger, and the thumb together. The remaining two fingers will be straight and in a relaxed position. The color of spiritual energy coming from God is sky blue. Take a deep breath and visualize sky blue color of peace coming from God and calming down the mind and relaxing the body. This exercise controls high blood pressure, removes stress, and relaxes the whole body. Loveful psychoneurobics with Apan Vayu Mudra. Sit in an upright position. Place your hands on your knees, palms facing upward. Touch the tips of middle finger, ring finger, and thumb together. Now, gently bend the index or the first finger at the base of thumb. The remaining little finger will be straight and relaxed. The color of spiritual energy coming from God is green. Take a deep breath and visualize green color of divine love coming from God and cleaning the heart and soul. feel the true love for all human beings. Forgive all who hurt you and ask forgiveness from those who had been hurt by you. Apan Vayu Mudra is known as the life-saving mudra as it controls angina pain and prevents the possibility of heart attacks. The mudra also helps control cholesterol level in the body, reduces acidity and normalizes blood pressure. Empowering psychoneurobics with Shivling Mudra. Sit in an upright position. Place your hands on your knees, palms facing upward. Now bring both palms together, linking the fingers of both hands. Cross the right thumb over the left, keeping the left thumb in an upright position. This is the Shivling Mudra. The color of spiritual energy coming from God is red. Take a deep breath and visualize red color of spiritual power coming from God and strengthening the body muscles and bones. Shivling Mudra imparts energy to the body, cures low blood pressure, helps eliminate chills, removes cough, and makes the body warm from inside. Empowering psychoneurobics with Mahavir Mudra. Sit in an upright position. Place your hands on your knees, palms facing upward. Now make a fist covering both thumbs with the four fingers. Use both hands. The color of spiritual energy coming from God is red. Take a deep breath and visualize red color of spiritual power coming from God and strengthening the body muscles and bones. The Mahavir Mudra is a natural painkiller. It relieves pain by releasing the body of all kinds of stress and tension. To get maximum benefit of Mahavir Mudra, you can perform this mudra by filling air in your mouth. Since this mudra raises the blood pressure immediately, it is advisable to do peaceful neurobics with Vayu Mudra after this for at least 5 minutes.
This kind of workshop, every time people are coming more and more in numbers, and the response that they give to me is that it is helping them to concentrate better, and because concentration is better, they are able to perform better in their professional lives. They are better as far as their studies are concerned, and their relationships become better, and for their personal health and happiness also, it is of good help.
I actually attracted Dr. Chandrasekhar into my life, and he introduced me to this new science, new technology that he's invented called psychoneurobics. And once I understood psychoneurobics and how it actually helps us, you know, draw energy directly from God, you know, essentially the spiritual energy, that's when I found the missing piece. And I actually integrated this psychoneurobics into my own work, and then I saw startling results, very amazing results in all the participants that worked with me.
Psychoneurobics can be very useful in modern medicine. It can act as a complementary to the treatment that we give. It's empowering the self, improving the power of the mind, improving the concentration, and of course empowering the intellect. Overall, it is going to help in management of a patient in a very scientific way by releasing the negative emotions and bringing in the positivity in life.
It was a very good session. We were told about memory power, how to use our mind to its full strength. We were told about how to increase our energy levels. It was a very enlightening session, and I think this knowledge is very useful, which can be used in any profession. You could be an actor, you could be a doctor, you could be an engineer. If you know how to use your mind properly, you can increase your memory levels, you can increase your concentration, you can live your life with more energy and more happiness.
Like my profession, I'm an income tax lawyer. So this psychoneurobics, this is for everybody, people of all walks of life. And in particular in my profession, certainly it has helped me. Because to regain the energy of the mind, and by meditation, and that is the best form of medication, I would say, and by practical application, that has increased the energy of the mind, that keeps you healthy. Healthy mind keeps you healthy body, and certainly it helps in all walks of your life.
I have been having quite a bit of adventurous nature from my younger age, and practice of Raj Yoga has been helping me to go through those severe experiences, like going to super high altitudes. In 1977, I drove my Java motorcycle to the highest points on the highest roads on this earth, called Khardungla and Chandla. I've been hearing Brother Chandrasekhar on psychoneurobics, and experiencing different stages of meditation combined with different colors gives you an additional experience, and you feel a bit more intensive and you find it a bit easier to go through each and every quality of the soul. Like with separate colors, you experience peace differently, bliss, power. You go through those experiences in a little different and distinctive manner.
This Raj Yoga, a continuous relationship. So, basically, our whole attitude change.
My name is Deepak Chaube and I am from Calcutta. Basically, I am a memory trainer, and by profession, I have been traveling throughout the country and teaching students how to develop their memory. And to develop my own memory, Dr. B.K. Chandrasekhar's psychoneurobic has helped me a lot. I have done PG diploma in psychoneurobic, and basically I practice blissful neurobic, and that has helped me to create national record in the category of fastest memory in the country.
In psychoneurobics, I have been applying these two things, enlightenment neurobics and blissful neurobics. These are the main one. So I have been practicing that. I have been taking the cosmic rays from the God and Shiva Baba. I have been taking cosmic rays from Shiva Baba and practicing on my body. I was giving rays to each and every cell of mine where it was affected. Basically, it works on the nervous system, endocrine system. So I was throwing rays, cosmic rays, on those cells itself. And I got cured a lot, and I recommend everybody for this, so that everybody should be benefited as I have been benefited. This gives treatment for Asadhya Rog.
I'm Sandeep Singh Tukral. I'm into business. I'm a businessman. We underwrite projects with the builders. And I met up with Dr. Chandrasekhar ji a little while back, and it was a great blessing. You know, he introduced us to psychoneurobics, and you know, by doing psychoneurobics, and it has empowered my mind to face the business situations a lot better. It has given me mental peace, happiness and prosperity in my business. My wife had been a BP patient, and she also, you know, has left BP medication totally after doing just 1 month of psychoneurobics. My mother had joint pains in her knees, and she has got 70% relief in the very first month of doing psychoneurobics. I think it's a great blessing on earth while doing psychoneurobics.
मैं खुशी तिवारी मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ. साइकोनोरोबिक्स से मेरी कागरता की शक्ति और मेमोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई.
चंद्रशेखर जी से मिलने के बाद साइकोनोरोबिक्स और हमारी न्यूरोथेरेपी को, दोनों के मिलने के बाद इसका नाम साइकोन्यूरोथेरेपी रखा गया है. और उसके मिलने से, उनके माइंड द्वारा उपचार करने से रिजल्ट्स पेशेंट के ऊपर बहुत अच्छे हैं.
My name is Dr. Gayatri Bhatt, and I'm a pediatrician by profession. 2005 February, I was back with cancer, relapse. My cancer had relapsed. I had a broken leg. I had exhausted most of my options of treatment, because I'd already had two bone marrow transplants. So at that moment, I met Chandrasekhar Bhai, and he introduced me to Raj Yoga. And to psychoneurobics also. And he has helped me and worked a lot on me to help me to, I would say, strengthen my willpower, strengthen myself in such a way that I could heal quite a few of my problems with the psychoneurobics and with the Raj Yoga. I have been practicing Raj Yoga since the last 7 years now, and in these 7 years I've had lots of ups and downs regarding my health. I have gone through almost 8 to 9 surgeries on my leg, and there was a point of time when there was a doctor who even suggested that I might need an amputation for my leg. But at the same time I also met another doctor who said that he might try and save my leg. And today I meet a lot of people who are in similar situations, and I like to go and meet them personally and tell them about how I have been benefited by Raj Yoga and by Neurobics.
I'm Dr. Roop Singh, MD Internal Medicine. After doing MD into Internal Medicine, I had education in naturopathy, a graduate degree, then a research in Ayurveda, and then into meditation for 15 years. For not many miracle patients, including Brother Chandrasekhar, it reminds me one thing, that if you can change your mindset, you can change your body set. Changing mindset, it requires exercise which has been labeled as psychoneurobics. Psychoneurobic is a new age frontier. All doctors that agree that we are not only human but human being, say body, mind and spirit. So far, all 3000 above therapies, they have got treatment for body but no treatment for mind and spirits. Probably psychoneurobic is one technique which will address the need of mind and spirits, so we can say that it will be an art of healing for the future generations.